जिस समय हम बड़े होते हैं फिर धीरे हमारे अंदर ये समस्त वासनाएं जागती हैं, तो उस समय युवा काल आने पर हम काम की सेवा में वासना की दृष्टि में लग जाते हैं। कभी क्रोध के बदले उठोक कर हम किसी को मना कर देते हैं और क्रोध के बदले उठोक कर बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ हम उल्टा सीधा हम भूल जाते हैं। इस प्रकार हम क्रोध की सेवा करते हैं, लोग की हम सेवा करते हैं, लोग के हम बदरूप हो जाते हैं, धन दौलत विषय संपत्ति के हमें प्राप्त हो जाए अधिक से अधिक मिले, इस प्रकार हम लोग के बदरूप मोह के हम बदरूप हो जाते हैं। ये पुत्र परिवार बंधु बांधव संसार मेरे हैं और इसके बिना हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, उसके लिए हम भय मचाते हैं। इस प्रकार लोग काम क्रोध लोग मोह मद मात्र कभी हम अहंकार में अभिमान में दूर हो जाते हैं, उच्च कुल में जन्म लेने का मत, धन का मत, रूप यौवन का मत और विद्या बुद्धि का पांडित्य का मत, इन मतों में हम डूबे रहते हैं। कभी हमारे अंदर मातृ व्यवहार आ जाता है, दूसरों को देख करके जलन पैदा होता है, हमें सहन नहीं होता है। इस प्रकार हम एक विकार बन करके इस संसार में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति घर पर लेकर के जा रहा था विदेशों में कहीं कमाने को, रास्ते में चलते चलते ठाकुर जंगल आया और उसने पढ़ करके उस जंगल में जगतों में उसे उसका सारा धन संपर्क नहीं मिला और उस जंगल में भटकता रहा, कहीं उसे शरण नहीं मिला। ऐसे बहुतों की स्थिति हुई तो जंगल में घूमते घूमते कुछ समय पशु पक्षी पशु पक्षियों के संजो में घूमते रहे, फिर कुछ समय देखा कि ऐसे दूसरों के लिए सुखी हुई है, तब उन व्यक्तियों के साथ में घूमते फिरते हुए जंगल में भटकने लगे और भोगों को भोगने लगे, बन के फल फूल इधर उधर खाने पीने लगे, पशुओं की तरह जीवन यापन होने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि जैसे एक बाघ ने उसे आक्रमण किया, जैसे ही आक्रमण किया तो बाघ ने खदरा को दौड़ता हुआ भागता हुआ पेड़ पर चढ़ने को समय नहीं, ये कुआं था जिसमें कि पानी नहीं और उसके दीवारों में कुछ डालियां उग गई झाड़ी जैसे लगा, तो उसमें जाकर के घुस गए और पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक गए। ऐसे समय में पेड़ की डाली को पकड़ करके तो लटका, परंतु बाघ आ करके एकदम हाँ हाँ कर रहा है एकदम खाने के लिए। नीचे था सांप, एक सांप था वो भी फन उठाया फन फन करने लगा, अभी नीचे गिरे तो साधे साथ काट देगा। और जिस पेड़ की डाली को पकड़े हुए हैं तो उस डाली ने फिर दो चूहा भी काटने लगे, एक सफेद चूहा एक काला चूहा खुलने लगे कि अभी थोड़ी देर में मतलब काट देगा कि गिर जाएगा। फिर उस डाली में भी एक मधुमक्खी की छत्ता लगी हुई है जिसमें हानि है सर, अब मक्खियां चारों ओर से घेर ली और उसे काटने लगी। ऐसे जाला में यंत्रणा में छटपटाते हुए ऐसी व्यक्ति जो भी ऊपर में तो नीचे धुसू, नीचे जाएगा सांप खा जाएगा और ऊपर आएगा तो बाघ खा जाएगा, और मधुमक्खी चारों ओर से काट रहे हैं। इस प्रकार हम लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। भगवान महाराज जी कहते हैं हे राजन, इस संसार में हम लोग एक तो माया के शिकार बने हुए, दूसरी बात इस स्त्री रूपी अंतरूप में संसार में हम खुश रहिए प्रवेश किए, कि संसार बना करके हम उसने इस शरीर को आश्रय किया, ये शरीर रूपी पेड़ की डाल को हम पकड़ करके हम लड़के किए, जो स्त्री रूपी अंतरूप में हम पड़े हुए हैं, एक घर बना करके हम उसी के मुंह में फंसे हुए दिन रात उसकी उन्नति करने में लगे हैं, परंतु चारों ओर से हमारी चारों ओर से बिल्कुल घिरी ऊपर में जो रहा है छोटे पकड़े हुआ है, कभी भी पठान बनेगा बाघ के समान, और वो काल रूपी सर को कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, फोन फोन कर रहा है कभी भी डर देगा। इस प्रकार जिस शरीर को हम धारण किए हुए हैं, इस शरीर को भी दो चूहा अर्थात दिन और रात हमारी आयु को काटते जा रहे हैं, इस शरीर की आयु समाप्त होती जा रही है। पर संसार में जो पुत्र परिवार आती है सजन बंधु बांधव इष्ट मित्र, ये सब मधुमक्खी की छत्ता है जिससे साथ हम संसार का सुख अनुभव करना चाहते हैं, परंतु चारों ओर से मक्खियां काट रही हैं तो उससे जाला में यंत्रणा में छटपटा सुरक्षा के लिए वो सोच रहा है अभी तो हमें मरना है, थोड़ा सा शहद पान कर, मरते मरते ही पान कर लो क्योंकि ये तो जीवन जाने वाला ही। ऐसे ही हम इस संसार में पड़े असंख्य ज्यादा यंत्रणा छटपटा रहे हैं, काम क्रोध लोग मोह के हम विचार बन करके माया की सेवा में पड़े हुए हैं और दिन रात माया की सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं सो रही है कि हम प्रभु की सेवा करें। जीवन भर तो हम संसार की सेवा में माया की सेवा में लगाया, हम थोड़ा सा समय क्या भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, हमारी बुद्धि नहीं हो पा रही। और इस प्रकार हम मृत्यु के कबल में रात में हम डूबे थे, इसलिए ये संसार इस संसार में पड़े हुए लोग सोचते हैं आत्मकल्याण के लिए कि कभी कोई जल की पूजा कर रहे पानी दे रहे हैं स्नान करते सुना, कभी सूर्य की पूजा करते, कभी कोई बुद्धि लेकर के पढ़ने लग जाते, कभी एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए तो उसी में पानी डाल दें, कभी कोई केले के पेड़ में पानी डाल दें। तो इस प्रकार बहुत प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं परंतु रघु गुरुग्रंथ का तपस्या न जाती, न तेरी गया निर्वा परान त्रिहारवा न छंद का नई को जलाल में सूर्य बिना महा पाद रजो सीखी। भरतवार जी कहते हैं हे राजन हे रघुरा, जहां अपनी सूर्य की पूजा करते हुए कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, संसार के बंधन से कभी कोई निकल नहीं सकता। इसलिए जब तक एक संत महापुरुषों के चरणों में अपने जीवन को रोजावर नहीं करता, जब तक उनके चरणों की सेवा में अपने को नहीं लगाता है, तब तक हमारी बुद्धि कभी संसार के मोह जाल से हट नहीं सकती, संसार की आसक्ति छूट नहीं सकती। इस संसार के जाल में हम फंसे हुए हैं, माया जाल में, इससे हम निकल नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, समय ऐसे रहेंगे संत महापुरुषों के चरणों में सदगुरु के चरणों में आश्रय लें और भगवान की कथाओं का आश्रय करें, भजन करें, उनके नामों का कीर्तन करें, जबकि वास्तविक जीवन में कल्याण होगा अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसलिए ये मायामय संसार है, इस संसार में मोह जाल में अनित संसार में आसक्त होकर इस शरीर में इंद्रियों में हम पड़े हुए काम प्रवीण बात क्रिया माया प्राप्ति खाए भक्ते भक्ते जगी साधु वही प्रभा सिद्धेश्वर महाप्रभु जी कहते हैं कि हम काम क्रोध के दास बन करके माया की लाठी खाते इस संसार में भटक रहे हैं। भरत महाराज जी जैसे ये हिरण में आसक्त हो करके ऐसे चले गए, महाराज भरत जी बोले कि ऐसे ही मैं पहले भगवान का भजन करने को आया, ये हिरण में आसक्त हो करके मेरा जीवन उसी तरह से निकल गया कि दूसरे जन्म में हिरण हो करके जन्म लेना था, तीसरे जन्म में इस रूप में आया दूसरे में, इसलिए मैंने जीवन में कभी किसी से बातें नहीं की। हे राजन एक शरीर में रहते हुए केवल तुम्हें ही उपदेश दिया बताया कि ये संसार ऐसा है, इसलिए संसार के प्रति आसक्ति मोह को त्याग कर संत महापुरुषों के चरणों में आश्रय लेकर प्रभु का भजन करना चाहिए। एक श्रीमद् भागवत का उपदेश है, एक श्रीमद् भागवत की कथा मैं एक कहकर के अपना बोलते हुए इन पर ध्यान देता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने महाराज चित्रकेतु का और भक्त गीता उपाख्यान ये सब शिक्षाओं से भरे बढ़ने ये सब सनातन धर्म है, तो भी सनातन धर्म का भी विचार उपदेश नहीं, इसी को कहते हैं ज्ञान सब तो प्रधानमंत्री के किस प्रकार से उन्होंने साधन किया, साधन की उच्च अवस्था पर पहुंचने पर भी जीवन के प्रति थोड़ी सी आसक्ति आ गई, ये अच्छा काम है प्राणी पर दया करने के लिए, दया करने गई जैसा कि दया है तो भी सम्मान के भजन करते चले जो कि आज उसके नीचे दो जन्मों के लिए तीन जन्मों के लिए नीचे फिर उनको तीन जन्म देना पड़ा, किरण की चिंता करते करते किरण बन गए,
तो यदि कोई भगवान की करते भगवान का नाम करेगा तो क्या होगा? इसको चीज को समझिए, इसमें ये शिक्षा है। वो हिरण की चिंता करते करते हिरण बन गए, और यदि हम भगवत चिंतन करते 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 उनके भक्तों की चिंतन करते 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 शरीर को छोड़ेंगे, हम पाप मनुष्य जन्म नहीं बल्कि हम उनके भक्तों की के रूप में हम जन्म ले करके मते माने भगवान का नाम होना चाहिए। गंगा जी का पानी देते हैं और चीज का चिंतन न आए, इस प्रकार से भक्त महाराज कहते थोड़े से शिखर गए उनका जीवन ही ये बर्बाद हो गया। तीन जन्म तो भी इसमें ये चीज देखते हैं कि भगवान की सेवा क्या थी, ये ताकत है हनुमान की ताकत नहीं, इनसे बहुत ऊंचे प्रहलाद महाराज से तो बहुत ऊंचे। वो क्षण क्षण में भगवान राम की सेवा करते हैं। एक समय की बात है, सीता जी स्नान कर रही थी और श्रृंगार कर रही थी स्नान करने के बाद। हनुमान जी बालक जैसे उनके पुत्र जैसे वहां पर पहुंचे, मरिया क्या कर रही? बेटा मैं सुहाग ले रही, सिंदूर ले रही। सुहाग पार मिल गया, ये सिंदूर पहन लेते हैं हमारे पति जीवित रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं जीवा नहीं हूं। अच्छा इसे राम खुशी हो या करती है ना। उन्होंने कहा जब माता जी जब कहीं गए बाहर गए तो वो श्रृंगार घर में पहुंच गए और सिंदूर को पानी के घोल कर और अपने सारे शरीर में कोट करके और आज दरबार में पहुंचे राम के पास। सब लोग देख करके हंसने समझे, अरे ये क्या कर दिया हनुमान आज? हनुमान जी ने कहा यदि मैया के यहाँ पर केवल श्रृंगार लगाने से सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी सुखी रह सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा और चीज जीवित रहे, तो मैं अपने सारे शरीर में सिंदूर ये अपनी चेष्टा पर आए। और एक दिन की बात, एक दिन सीता जी भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ने इन चारों ने विचार किया ये हनुमान जब से आया तब से हमारी सेवा बंद हो, ये सब सेवा दे देता है, हमको कोई सेवा ही नहीं देता। इसलिए हम लोग जितने दिन और रात की सेवाएं हैं हम लोग इसको बांट लें, और बांट लिया ऐसा कि हनुमान के दिन में एक ही सेवा मिले, सवेरे से लेकर के फिर दूसरे सवेरे तक की सेवाओं को आठ भाग करके दो दो बार घंटे के हिसाब से उन्होंने बांट लिया हनुमान के पास में पूरी सेवा में। हनुमान जी बड़े उन्होंने रामचंद्र जी के पास में पटकने नहीं दिया। हनुमान जी रोने लगे और जाकर के सोचते प्रभु हमारी सेवा सब तो इन लोगों ने बांट ली, अब हमको कोई सेवा ही नहीं है क्या करूं? तो उनसे यदि कोई सेवा पत्र नहीं हो तो तुम वो करना, मैं अब तो सारी सेवा ले ली। अच्छा ठीक है तुम भी विचार करके कुछ सेवा करना, तो प्रभु हमसे एक सेवा मांगते, मैं आपके पास में नहीं हूँ, मैं बाहर घर के दरवाजे के बाहर में रहूंगा और जब आपको जम्भारी आए तो मैं सूखी बजाय बदलिए आप सेवा। जम्भारी आए ना तो राम राम का करके सूखी बजा लेना चाहिए, मैंने जम्भारी ना। जम्भारी आने से फिर क्या होता है? आलस हो, आलस से क्या होगा? आपको मैं थोड़ी सी जम्भारी आई इसके बाद में आलस थोड़ा सा हुआ, इसके बाद में पता तुम्हें रुचि रही होने से आप छठ लाखों मन का पत्थर आपकी आंखों में चढ़ जाएगा, आप वहां से क्या करेंगे? आप उसे बोलेंगे और मिला जाएंगे, इसलिए आवाज से ही नहीं करना चाहिए, जम्भारी आने नहीं देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये सेवा हमको दे, अच्छा हमको तो जम्भारी आती नहीं, अरे प्रभु कभी भी आ जाए तो मैं यहाँ बढ़ूंगा, मैं चुकी बजा दिया करूंगा। अच्छा तो जाओ उन लोगों से पूछो, चारों से चारों पर एक प्रसन्न हुए, ये सब उनको तो कभी जम्भारी आती नहीं है और हम लोग सेवा ऐसे करेंगे उनको जम्भारी नहीं आए, और इसलिए बाहर में बैठा रहेगा, जब जम्भारी आएगी, जम्भारी तो कभी आएगी नहीं, क्या काम भी नहीं है। हनुमान जी बाहर सोचा कि प्रभु को तो जब हमारी नजर सौंपा जाए रात में, हम तो बाहर में हैं, तो पहले से क्यों बांसुरी बजाने लगे? बांसुरी बजाने लगे और आपको जंगल जाने लगी और खाना पीना छोड़ गया। दिन को दिन रात बांसुरी बजाए और ऐसा करें और खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, पैर दबाना बंद हो गया, सभी काम भी उनका बंद हो गया और ये चारों को इसके बाद नहीं कर सके और वो सुर्खी बजा रहे भगवान के पास में गए जिससे प्रभु आप कोई सेवा भी तुम नहीं कर रहे हैं, दिन रात सुर्खी बजाता है और आपको जब खाई आती है अब हम लोग क्या करें? अब तो जाओ उसके पास में और उसे क्षमा मांग करके और उसको कोई सेवा का भाग हो तब वो माने जाने से सुर्खी बजाता है और हमको व्यवहार की जाते हैं। फिर उनके पास में गए, उनसे दौरा किया, उनसे क्षमा मांगी और उनको भी सेवा का दिया है। अच्छा तुम पैर दबा देना बहुत देर कर गए, उनको पानी ला देना और सब कुछ कराएंगे। ये हनुमान जी की सेवा कैसा सेवा करते। एक बार सीता जी ने अपने गले का हार उनको दिया, हनुमान जी ने उसको दांत से काटा और उसको फेंक दिया। सारी मणियों को जो करोड़ों रुपये की थी मोतिया और हीरे थे सबको काट करके फेंक दिया। सब लोग हंस रहे हैं, किसी ने कहा इसको क्यों काट रहे हैं? तो मैं देख रहा था कि इसके अंदर में राम नाम लिखा है कि नहीं। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ लिखा है तो देखो ये बच्चा से किया देखा कि ऊपर से नीचे तक राम 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 राम। ऐसे ही हनुमान जी भगवान के सेवक हैं किंतु इनसे भी निराले भक्त लोग हैं। कौन? पांडव अर्जुन जी है। कैसे? भगवान ने कृष्ण ने अपनी बहन की शादी भी कर दी है किससे? अर्जुन सुभद्रा देवी की बहन। और ये कृष्ण जो हनुमान जी के आराध्य हैं ये आराध्य होकर के भी अर्जुन का घोड़ा चलाते हैं और हाँसते हैं और अर्जुन कहता है भाई जरा बीच में देखो, कभी चढ़ा करते हैं कभी उनको आदेश देते हैं, कृष्ण उनका आदेश पालन करते हैं और कभी कृष्ण उनको गले से लगा देते हैं, ये कभी उनको लगा एक थाल में बैठ करके खाते हैं, कभी सो रहे हैं एक पलंग पर और अर्जुन का जिधर में पैर है वो कृष्ण के छाती पर से गया है और उसको सुभद्रा जी और रुक्मिणी जी और एक तरफ में कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से जा रहा है और उनको द्रौपदी भी उसको चमक भुला करके सेवा और अर्जुन के रोम रोम से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण। दोनों सफा है हनुमान जी राम को गले से नहीं लगा, उनके पास को रूम करके बैठ नहीं कर सका सका नहीं कर सकते, जूठा नहीं किया अर्जुन ये कर सकते। इस बीच अर्जुन के भी श्रेष्ठ भक्त लोग हैं कौन? उद्धव जी। उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, मंत्री हैं, सब प्रकार से उनके अपने निकट हैं। जब कृष्ण को जरूरत हुई तो गोपियों को समझाने के लिए माता पिता को समझाने के लिए अर्जुन को नहीं भेजा, थोड़ा सा महाभारत के युद्ध में उन्होंने 200 रूप दिखलाया, हाथ जोड़ करके अर्जुन बोले प्रभु मैंने आपको सखा कहा है, हमारे रथों को मैंने आपसे करवाया और क्षमा कीजिए आप मैं जीवन भर में आपको सखा नहीं कहूंगा, मैं आप ये विश्व ब्रह्मांड के प्रभु हैं, मैं ये भूल आप मुझे क्षमा। उद्धव जी इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं कर सकते, गोपियों का मर्म जानने वाले कुछ हैं, इसलिए उद्धव जी को भेजा। कहा ब्रज में, जबकि वो ब्रज से चले आए थे आपके मथुरा में थे या वहां द्वारका में थे, उसमें उद्धव जी को भेजा मथुरा से। किसके भेजा? मथुरा में किसे हम प्रेम की बातें करें कोई प्रेम की बातें समझता नहीं है, इसलिए उद्धव को जंगली गोपियों के स्कूल में भर्ती कर दूं और वहां जाएंगे और प्रेम का पाठ यदि पढ़ेंगे तब फिर लौट करके आएंगे तुमसे प्रेम की बातें करूंगा। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ा पंच करो, प्रेम ये ढाई अक्षर है, सारी विद्याओं का कार है, यही भगवान का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप है। इसको जिसने प्रेम पढ़ लिया वो तो पंडित है, नहीं पंडित। कृष्ण ने कहा इस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था कि स्कूल में गोपियों के स्कूल में इसको भेजू, वहां पर गए और गोपियों का यह अगाध प्रेम देख करके समझ गए अरे वृंदावन में कृष्ण पूरे गोपियों के बाद ये मथुरा द्वारका में तो बहुत शांतिक रूप में वहां पर तो है ही नहीं है। और तब उन्होंने गोपियों की वंदना की, वंदे नंद ब्रजे श्री नाम भावें वंदे मैं गोपियों की चरण की वंदना जिसकी प्रभाव से विश्व पवित्र हो सकता है। मैं वृंदावन में कहीं एक गुरु और लता बनना चाहता हूं जो गोपियों की चरण की भूमिका स्पष्ट से आका हो चरण मैं वृंदावन की वृंदावन में कहीं भी यदि गुण लता हो जाऊं और गोपियां इधर उधर चलती हैं कृष्ण से मिलने के लिए उसमें उनकी चरणों की धूल हमारे सिर पर लग जाए मैं वृंदास हो जाऊं, मैं तीर्ण और गुण बनना चाहता हूं। वे तीर्ण और गुण बन करके वृंदावन में गोवर्धन के पास में कुसुम सरोवर के पास में घास बन करके बने ऐसी गोपियों की महिमा है। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही प्रेम का आदर्श है, यही हमारा सनातन धर्म का आदर्श है जिसके प्रति कृष्ण हो जाते हैं। अब इसके संबंध में अभी रात हो गई, अब हम लोग कल इसके विषय में हम लोग बताएंगे। आप लोग गंभीरता से इन चीजों को समझ करके सनातन धर्म को समझने की ये है सनातन गौर Thank you. उनके विदाई भी टेढ़ी, उनकी मैया भी टेढ़ी है, उनकी गोपियां भी टेढ़ी है, जमुना भी टेढ़ी है, उनकी नजर भी टेढ़ी है, पंक्ति भी टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी सब कुछ उनकी टेढ़ी। और टेढ़ी हो करके जब किसी के हृदय में घुस जाते हैं, निकलते नहीं है, टेढ़े हैं ना, इसे जरा सुनिए।
Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna.